मिलेगा या औहदा मिलेगा औरंगजेब के दरबार से। स्वामी जी रात को जाके बाग में उतरे ही थे तो वो पांच सिपाही वहां पहुंच गए। तब स्वामी जी ने कहा, लाल दास ये जो लोग हैं ना यार लातों के कभी बातों से नहीं माना करते और यार घोषों के कभी इशारों को नहीं जाना करते, लठ तोड़ लो यहाँ से पेड़ों से और इन पांचों को चारों तरफ से घेर के इनकी हड्डी पसीने सीधियां करके जरा पकड़ के बांध के ले आओ हमारे पास। अब वो पांच थे, ये इतने सुंदर साथ थे, इशारा होने की देर है तो मर मिटे सारे, दमादम पकड़ लिया उनको, रस्सियों से बांधा और खींच के स्वामी जी के पास लाके चरणों में गिर दिया। स्वामी जी ने कहा छोड़ देना, तब बिठाया, तब चर्चा सुनाई। जो स्वामी जी के पास बम था, हथियार क्या है, एक चर्चा बस, किसी को कष्ट नहीं देना। अब उनको चर्चा सुना के समझाया कि मूर्खो, जब पता था तुम्हें कि पुर्दल खान वापस चला गया है, तुम क्या लेने आए, तुम हो कौन और हमें पहचाना है कि हम कौन हैं? हम को बादशाह के बरखिलाफ नहीं फिरते, हम तो अर्श इलाही से उतरे हैं वास्ते अपनी उम्मत को लेने के वास्ते। और सब उनको जो है कुरान से चार घंटे चर्चा सुना के जब सीधा जरा कुछ दिमाग हुआ, चरणों में गिर पड़े और माफी मांग करके वो वहां से गए। अब कहने का तात्पर्य क्या, सुंदर शादी बीतक का कोई जगह बची है जहां स्वामी जी पर संकट नहीं आए? बोलो भाई, पूरा महीना चर्चा सुनी है, अभी क्या, अभी गड़े में पहुंचे ही हैं तो वहां के राजा का जो राजा का लड़का था वो बदमाश था, उसने गुंडों को लेकर के सोचा कि मैं इनको लूट लूं। तब वाजपेयी पंडित जी थे वहां पर, उन्होंने जाके समझाया, अरे मूर्खो शर्म नहीं आती, हिंदू राजा होकर और तेरा लड़का ऐसा काम कर रहा है, हिंदू साधुओं को लूटने जाएगा। तब उनके कहने समझाने से वो बात बुझी। यहां से अब स्वामी जी भेजते हैं लाल दासी को, उत्तम दासी को और अनंत दासी को कि तुम, पहले लाल दास को हुक्म दिया कि तुम जाओ फिर दोबारा दिल्ली जाओ, औरंगजेब से जाके कुरान से बातें शेख इस्लाम से करो, घबराओ मत, हमने इनको चैन से बैठने नहीं देना। तब लालदास ने कहा, हजूर जो हुक्म है तैयार हूं, पर हमारे लिए प्रोग्राम डायरी में क्या लिखा है राजीव राय ने वो तो देख ले, मतलब समझे हो कि नहीं, कुरान जो है वो हमारी डायरी है। अब लालदास ने खोला 16वां सुपारा तो उसमें क्या लिखा हुआ था, दो बादशाहों का नाम है, किसी को याद है? शाबाश, हैरून और फैरून का किस्सा 16वें सुपारे में आता है। अब उसको घटाना है, हम लोग कुरान जो सुंदर साथ अच्छी तरह वाणी को नहीं जानते ना, कुरान पढ़ के भेद नहीं समझ सकेंगे। उसमें क्या लिखा था कि मिस्र के राजे का नाम फैरून था और वो रावण की तरह और कंस की तरह से पापी था, कोई खुदा बुदा को जानता नहीं था। उस समय मूसा पैगंबर पर्वत पर बैठ करके, कोई तूर जिसको कहते यानी हिमालय पर्वत, कोई तूर पर बैठ करके खुदा की बंदगी कर रहा था। तो उस फैरून ने क्या किया कि अपने छोटे भाई को, जैसे बाली ने सुग्रीव को लूट कर उसकी बीवी भी छीन ली, राजपाट छीन के निकाल दिया था, बिल्कुल उसी तरह से हैरून की पत्नी भी छीन रखी थी और उसको राजपाट से छान कर उसको जो धक्के मार के निकाल रखा था, वो बेचारा जंगलों में धक्के खाता फिरता था। अब मूसा पैगंबर को खुदा ने हुक्म दिया कि ए मूसा पैगंबर, इस फैरून के जुल्म और सितम को मिटाने के लिए मैं तुम्हें इल्मे खुदा ही बख्शिश करता हूं, उसके द्वारा तू दुनिया को जो है ज्ञान सुना करके तैयार कर। अब वो क्या करे कि जिस वक्त ज्ञान चर्चा सुनावे 10-20 को रोज यकीन आवे, फैरून बादशाह को पता चल गया वो 10-20 की रोज गर्दन काट दे। तब मूसा ने दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह ताला, ओ बादशाह, मैं फकीर, मेरा और उसका मुकाबला क्या है, मुझे कोई खुदाई ताकत अपनी बख्शो जिससे मैं मुकाबला करूं। वाणी से तो 10-20 जो 50 आदमी चार होते हैं वो जालिम है, वो उनका सिर काट देता है। कहने लगे अच्छा। तब मूसा को जहरी तौर से एक रुमाल और एक लाठी, मूसा की छड़ी आज भी सारे ईसाई लोग जानते हैं, वो जादू की छड़ी थी कि जिस जो कुछ भी तुम इस छड़ी को कहोगे वही ये छड़ी करेगी, और जिसके सिर पर रुमाल धर दोगे बस उसकी हमेशा विजय होगी। उन्होंने कहा अच्छा हजरत ठीक। कहने लगे अब तो ऐसे कर कि हैरून बादशाह मांगा क्या कि मुझे मेरा कोई भाई बख्शो, भाई मतलब कि जिसका यकीन तुम्हारे पर हो लेकिन बादशाह हो, क्योंकि बादशाह के साथ है, बादशाह ही लड़ सकता है, एक फकीर बादशाह के साथ क्या लड़ेगा। तब उन्होंने कहा फिक्र ना कर, उसी फैरून का भाई हैरून जो है वो जंगलों में मारे मारे धक्के खा रहा, उसको बुला, उसके साथ थोड़ी सी सेना है अभी और कुछ तेरे भक्त होंगे, तुम क्या करना अपनी छड़ी को साथ रखना, हैरून बादशाह जब आएगा ये रुमाल तो उसके सिर पर फहरा देना, ध्यान के साथ सुंदर साहब जी। और फिर क्या करना, मिस्र के बीच में दरियाए नील, एक नदी का नाम है दरियाए नील, वो नदी बहती है, ऐसी अकल मिस्र के राजा की गुम हो जाएगी कि सेना लेकर के हैरून के साथ तुम जाना और नदी के ऊपर अपनी छड़ी बिछा देना। तो छड़ी को हुक्म देना क्या है, छड़ी पुल बन जा, ये पुल बन जाएगी। तो क्या करना, हैरून को कहना बजा दे बगैर लड़ाई का। तो हैरून को ललकारा हुआ देख करके, सुग्रीव ने जैसे ललकारा था तो बाली निकल के आया था दोबारा और मर गया, इसी तरह से जब हैरून बादशाह जाके फैरून को ललकारेगा तो फैरून सेना लेकर बड़े गुस्से में चढ़ के खुद लड़ने के लिए आ जाएगा। तो क्या करना, जैसे जैसे वो लड़ने के लिए आगे आवे तो लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि उसका मुकाबला तो कर नहीं सकोगे, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी सेना होगी और तुम्हारे पास मुट्ठी भर सिपाही होंगे, तुम पीछे हटते जाना। जिस वक्त तुम्हारी सारी सेना, तुम और हैरून बादशाह बिल्कुल नदी के पुल के इस तरफ आ जाओ तो और वो सारी फौज एन पुल के बीच में आ जाएगी, तो उस समय उस अपनी छड़ी को खींच लेना और वो सारे के सारे उसमें डूब करके मर जाएंगे, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, अब घटाओ इसको। अब ये चर्चा सुनिए ना, बताओ हैरून कौन, फैरून कौन और मूसा कौन। स्वामी जी के सामने उठा करके लालदास जी कुरान ले गए, कहने लगे स्वामी जी मैं दिल्ली के लिए तैयार हूं, पर जब तक आपन को अपने जैसा कोई भाई ना मिले। मूसा पैगंबर कौन हुए यहाँ, श्री प्राणनाथ जी। फैरून कौन हुआ, औरंगजेब। और हैरून कौन है, महाराजा छत्रसाल जी। कि जब तक अपने को कोई ऐसा राजा ना मिले जिसको राजीव राय की वाणी पर यकीन हो, तब तक अपनी फतेह होनी जरूरी है, हम कामयाब ना हो सकेंगे। इस वास्ते जो है, यदि आप ये कुरान तो आपका ही कहा हुआ है इसके मुताबिक चलना है तो मुझे और सेवा बताओ, और अगर हुक्म बादशाह ही जाना दिल्ली तो मैं तैयार हूं। तब वो कुरान को देख करके स्वामी जी ने छत्रसाल उसको जो है लालदासी को रोक दिया कि अच्छा छत्रसाल जी के मिलने के वास्ते अब तुम जो है तैयार हो जाओ। अब क्या होता है, यहां से गड़े से इधर लालदासी तैयार होते हैं और उधर से थोड़ी भी तक जो है रामनगर की बकाया बच गई थी कि उस समय देवकरण जो, ध्यान के साथ सुंदर साहब जी ये नाम याद रख लेना, छत्रसाल जी के भतीजे का नाम है देवकरण और छत्रसाल जी के चाचे का नाम क्या है, बाल दीवान। ये तीन नाम अब याद रखोगे तो तब आगे पन्ना जी की भी तक समझ में आएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। क्योंकि चाचे का चाचा देवकरण का चाचा कौन और छत्रसाल जी का चाचा कौन, बाल दीवान। अब इसीलिए बार बार ये नाम आएंगे और चाचा शब्द भी निकलेगा तो आप कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में ना हो जाना कि क्या हो रहा है। अब यहां जब स्वामी जी वहां से चल चुके तो उस समय हुआ क्या, चलने ही वाले थे तो सूरत सिंह की सोबत, ध्यान के साथ, कौन सा सूरत सिंह, और जिसने ऊपर ले जाके अटारी पर जो है वो नंबर दिया था, उसकी दोस्ताना देवकरण जी के साथ थी। जब उसने तारतम ले लिया और जीत गया तब उसने जाके देवकरण को बताया कि देवकरण यार इतने दिन तक फुर्सत मिली नहीं और मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सका, केतकी नदी के किनारे पर तो पारब्रह्म आए हुए हैं। कहने लगे तू मेरे साथ चल, मैं तुझे चर्चा सुनाता हूं। अब देव करण जी सूरज सिंह की सोबत से स्वामी जी के चरणों में जब रामनगर थे अभी उस वक्त पहुंचे, चलने वाले थे, तैयारी ही थे, चर्चा सुनी और सुन करके बुद्ध निष्कलंक अवतार की जब पहचान स्वामी जी ने। अब हिंदुओं को तो कुरान की चर्चा थोड़ी सुनाई जानी है, इसलिए स्वामी जी ने वाणी में बार बार कहा हिंदुओं को, हिंदुओं की, कि जो कोई हिंदू आवे, अगर कोई गीता का मानने वाला है, गीता पे विश्वास रखता है, तो उसको गीता से चर्चा सुनाओ, और रामायण पे विश्वास रखता है तो उसको रामायण से चर्चा सुनाओ, भागवत पे विश्वास करता है उसको भागवत से चर्चा सुनाओ, वेदों पे विश्वास रखता है तो उसको वेदों से चर्चा सुनाओ, तो कौन अपना भला नहीं चाहेगा। और सारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि परमात्मा उत्तम पुरुष अक्षरातीत के बिना और कोई है ही नहीं, और 28वें कलयुग में उसी ने बुद्ध निष्कलंक अवतार बन के आना है। अब ध्यान से सुनिए, 12 साल पहले 1729 में जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सूरज छोड़ा था और जागनी के लिए निकले थे, उसी रात छत्रसाल जी को आके सपने में उन्होंने दर्शन दिए, और दर्शन दे करके सब अपना स्वरूप बता दिया, पोशाक बता दी, दर्शन दिए कि मैं बुद्ध निष्कलंक अवतार हूं, तू शाकुंडल की आत्म है, हम तुझे ढूंढने के लिए चल सके हैं, और सपने सत्य हो, इसलिए अपनी मोहर का, छाप का, जिस पर उनकी छाप लगी हुई थी, सपने में मुट्ठी में 1 रुपया धर दिया। अब दर्शन दे के जब हटे तो छत्रसाल जी एकदम भड़बड़ाते हुए उठे कि भैया मैंने आज क्या देखा है, कौन सफेद सफेद कपड़ों वाला यह था जो कहता है मैं पार ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ और विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ, तेरे मिलने के लिए मैं चल चुका हूँ, अब ये बताया नहीं कहाँ से चल चुका हूँ। तो मुट्ठी खोली तो स्वामी जी का स्वरूप और मोहर लगी हुई थी, तो जैसे तावीज पहनते हैं, छत्रसाल जी ने उसने में निकाला सुराख, तो अपने गले के अंदर वो तवीज की तरह से गले का मतलब लंबा धागा डाल के झोले के नीचे तक जो रहे वो छोड़ रखा। और ये बात महलों में अपने चाचा से देवकरण उस समय घर पे था, सबको बता दिया कि ऐसी ऐसी भाई बात है। तो चाचा कहने लगे अरे सपने के होते हैं, जैसे अपन लोग भी कहते हैं अरे सपने के ही झूठे होते हैं, तो कौन सच्चा सपना होता है, जब आएंगे देखी जाएगी, अभी तुझे क्या चिंता करने की जरूरत है। अब इस बात का पता देवकरण को था कि 12 साल पहले चाचा ने छत्रसाल जी ने वो मोहर दिखाई थी, तो तुरंत स्वामी जी को देवकरण ने क्या कह दिया कि ओ मेरे धाम के धनी, आपके इंतजार तो मेरे चाचा छत्रसाल जी 12 साल से कर रहे हैं, और आज मैं जब उनको जाके ये बताऊंगा कि मैं उनकी शक्ल देख के आया हूं, वो तो अपना तन मन धन क्या जान कुर्बान आपके ऊपर कर देगा, मैं जाता हूं भागा भागा। अब ये यहां क्यों आया हुआ था, राज तो था छत्रसाल जी का मऊ मसानिया जब हम पन्ना जी जाते हैं झांसी से रस्ते में, लेकिन ये किसी वजह से लड़ करके घर से रूठ करके और रामनगर में आया बैठा था। स्वामी जी तब कहते हैं तू रामनगर क्यों आया, तुझे पता है हमारा पैगाम दिलाने के वास्ते तुझे घर से निकाल के यहां बसा रखा था, जा छत्रसाल जी को जाके बता। अब उधर जो है क्या होता है, महाराजा छत्रसाल जी को सूचना देने के लिए देवकरण जी पहुंचे और जाकर के पूरी सूचना दी के चाचा जिसकी इंतजार 12 साल से कर बैठे हो आ गए, साक्षात मिल के आया, वही स्वरूप हैं, वही बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, पर चाचा हिम्मत करके बात करना जरा, उनकी औरंगजेब के साथ दुश्मनी है, अक्स रखता है औरंगजेब, जहां जहां स्वामी जी जाते हैं पीछे पीछे औरंगजेब की फौजें चढ़ी आती हैं, ये अपना सोच कर लेना। जिस वक्त अब औरंगजेब को पता चलना है, क्योंकि उनके सिपाही शेख हैदर पकड़ने के लिए आए थे और गुलाम एदी भी, गुलाम मोहम्मद एदी भी आया था, उन्होंने रिपोर्ट दे देनी है कि वो जी है मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल जी की राजधानी में चले गए हैं, तो औरंगजेब की फौजों का तेरे ऊपर चढ़ाई हो जानी है, ये बात अपना सोच समझ के तू तब बातें करियो। आप चाचा बलदीवान तो कुछ घबरा गया, 76 साल काहे का झंझट करता फिरता, कहता बस चाचा बोलने की जरूरत नहीं। अभी ये बातचीत संदेशा मिल ही रहा था कि इतने में लालदास जी, आनंद दास जी और उत्तम दास जी, ये तीनों जने महलों में जय जयकारा बोलते हुए पहुंच गए। अब महाराज छत्रसाल जी ने बड़ा स्वागत किया, कि ये श्री प्राणनाथ जी के, स्वामी जी के, बुद्ध निष्कलंक अवतार के पैगंबर आए हैं, आदमी आए हैं। लाल दास जी ने बैठ करके गीता से, भागवत से, रामायण से, हिंदुओं के ग्रंथों से खूब 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 अच्छी तरह से समझा दिया कि 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार ने आना है, ये वही आ चुके हैं। और तेरी आप स्वामी जी ने पहले ही परख लिया था रामनगर में बैठे हुए कि ये जो है शाकुंडल है, वहीं से कह दिया कि ये शाकुंडल की आत्मा है। शाकुमार कौन है? औरंगजेब। मिला तो सही, सिंधी भाषा में 241वीं चुपाई पढ़ लेना सवेरे, शाकुमार बाई गढ़वी पन आई ना साथ माहे। स्वामी जी ने साफ सिंधी भाषा में लिखा कि शाकुमार बाई से हमारी मुलाकात तो हुई थी, पर वो सुंदर साथ के अंदर अभी तक शामिल हुई नहीं, तातम उसको मिला नहीं, रूबरू आई नहीं। अब शाकुंडल महाराज 76 साल जी हैं, इनके लाल दास जी बैठ करके 10-15 दिन तक खूब अच्छी तरह समझाते हैं। अब इधर से स्वामी जी गढ़गरिये पहुंच जाते हैं, तो वहां से जब पूरा यकीन 76 साल जी को आ गया, तो 76 साल जी अब लाल दास जी को कहते हैं कि लाल दास मेरे साथ फिर आत्म का संबंध तो है, देवकरण को मैं भेजता हूं अपनी तरफ से, तुम दोनों जाओ स्वामी जी को लेकर के आओ, और मैं मान पत्र देता हूं उनको, और दूसरा मैं उनके आने की स्वागत की तैयारियां करता हूं। अब वो दोनों जने देवकरण और यानी लाल दास जी आकर के अगरिये में स्वामी जी से मुलाकात करते हैं। जब अब स्वामी जी को सूचना मिल गई, तो अब वो अगरिये से आगे बढ़े, अगरिया पन्ना जी के बिल्कुल साथ ही पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है। स्वामी जी ने कहा अच्छा भाई घबराओ नहीं, जब 76 साल जी तैयार हो गए तो अभी चलते हैं, इन सब सुंदर साथ को वहां पहले पहुंचा लें। अगरिये से चल के स्वामी जी पन्ना जी में साक्षात अमराई घाट पे पहुंच गए। बोलो श्री प्राणनाथ। और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इस पन्ना जी के वास्ते सतयुग से शिवजी महाराज को, शिवजी महाराज ने उमा को बताया था कि पद्मावती केन सरिते मध्य पृष्ठे विराजता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यन्ति कलो युगे। अब अमराई घाट जो कहते हैं ना, ये उस समय नदी चलती थी और वहां पर आम के पेड़, जिसको पंजाबी में अंब कहते हो, आम के बहुत घने पेड़ होने की वजह से उस घाट के ऊपर, मतलब वहां पर स्नान नहाने धोने की जगह थी, तो उस घाट का नाम अमराई घाट आमों के अधिक होने की वजह से था। और इसीलिए अब भी जाके देखो सवाए आम के उस जगह पर और कोई पेड़ नजर ही नहीं आता। आम अधिक होने की वजह से वहां छाया थी, व्यवस्था सब ठीक थी। स्वामी जी ने जब वहां डेरा लगाया तो अब क्या होता है, हाँ जी, हाँ किलकला नदी पर। अब जिस समय उस जाकर के नदी पर डेरा लगाया, तो देखते साथ ही सामने टीला देखा बस, तो क्या ध्यान से शब्द आपने सुने नहीं, ठौर झंडे की चेतलिया, बस सब सुंदर साथ को कह दिया, बस सुंदर साथ जी ये वही जगह पन्ना है बुंदेलखंड, जो हमने पन्ना जी में बैठकर परम धाम से निश्चित किया था कि दुनिया में जब जाएंगे तो राजधानी कहाँ बनानी है, और वहां पर 12,000 मोमिन और 24,000 कुमार का सख्यों को 36,000 को इकट्ठा करके तब परमधाम वापस लौटेंगे। इस दुनिया में अगर परमधाम की कोई राजधानी है तो वो कौन सी है, बस इसको हृदय में टिका सको, समझ सको अपनी बुद्धि से कि पन्ना जी का महत्व क्या है, बस इससे ज्यादा कुछ कहना मैं चाहता नहीं। देखते साथ ही स्वामी जी ने सुंदर साथ को कह दिया कि बस लाल दास इससे आगे अब चलना नहीं है, ये अपनी राजधानी है, ये मुकाम है जहाँ 12,000 36,000 का मेला करके तब परम धाम को लौटेंगे।
नदी किलकिला तीर पे,
किलकिला नदी के तीर पर
उतरे परमहंस आए।
कौन आए हैं? परमहंस आए हैं। बताया था ना परमहंस, जीव हंस और परमहंस। परमहंसों का मतलब ब्रह्म सृष्टि वहां पर आकर के उतरे हैं, और उनमें सरदार कौन है? उनके मालिक सरदार कौन है? सारी फौज के सब सुंदर साथ के मालिक कौन? आप अक्षरातीत श्री राजजी महाराज, वो धाम के धनी जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं, वो हमारे मालिक वहां पर पधारे।
देख अपना ठौर सुख पाए,
देख अपना ठौर, अपना ठिकाना देख लिया कि बस भाई अपनी जगह आ गई है, यहीं तक ही मंडल तय करनी थी सो पूरी हो गई, बस अब निश्चित होकर के यहाँ डेरा डाल दो।
डेरा करत बरना के,
अभी जब इन 2-3 साल में जो सुंदर साथ गए होंगे तो शायद आपने पत्थर भी पड़ा होगा और वो जगह भी देखी होगी श्री एच के एल भगत साहब जी की कृपा से। वो घाट अब घाट बन चुका है और वहां पर बकायदा पत्थर लग गया है, श्री प्राणनाथ जी के शुभ आगमन का स्थान अमराई घाट, और नींव के लिए तो फिर भगत जी का नाम आना ही था कि उनकी कृपा से यह बना। बकायदा सीढ़ियां पक्की बन गई हैं, पत्थर लग गया है, जो इन्हीं 2-3 साल में पन्ना जी सुंदर साथ गए हों वो शायद देख आए हों, और जो आज दिन तक पन्ना जी नहीं गए उनको सूचना दे ही डालूं, वो इस साल चलने के लिए तैयार हो जाए, तैयार हो जाएं, जैसे मर्जी हो जाएं। मई की 26 तारीख को 1200 पाठ पन्ना जी में रखे जा रहे हैं, डेट नोट कर लो। स्पेशल बस गुड़गांव से लेकर के चलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, गर्मियों की छुट्टियां होंगी, एक साल पे के नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा क्या, थोड़ा भाइयों को जरूर कष्ट पड़ेगा काम काज का, सारी उम्र कमाने से अगर कुछ नहीं बनना तो 4 दिन से भी कुछ नहीं बनना। जिन्होंने छुट्टियां लेनी है छुट्टियां ले ले, जरूरत पड़ गई वो ये जरूरत पड़ गई। सुंदर साहब जी 1745 में गुम्मट साहब बन करके स्वामी जी के सामने तैयार हो गया था, कितने साल हो गए बिल्डिंग को? 300 साल। कोई नूरी तो ईंटें लगी नहीं, नूरी मिसाला तो लगा नहीं था। उस समय बिल्डिंगों के बनाने का जो तरीका था, जितनी मजबूत बिल्डिंग वो बन सकती थी वो बन चुकी, कोई नूरी तो ईंटें लगी नहीं, नूरी मिसाला तो लगा नहीं था। उस समय बिल्डिंगों के बनाने का जो तरीका था, जितनी मजबूत बिल्डिंग वो बन सकती थी वो बन चुकी, लेकिन 300 साल भी तो कोई पीरियड है, और बारिशें कितनी होती हैं, कुछ वहां के लोगों की लापरवाही समझ लीजिए, गुम्मट के साथ साथ पानी रिसता रहा अंदर को, और रिस रिस के वो सारा पानी जाता रहा छत को। अब छत इतनी पोली धमक धमक करती है कि शायद किस वक्त वो छत की छत ही नीचे गिर पड़े। और दूसरा, जहां गुम्मट साहब ने स्वामी जी की साक्षात समाधि, और सरोज साहब जिसको हम अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं, उस दीवारों में त्रेड़े आ गई हैं, फट चुकी है, मैंने आंखों से देखा है। और अब इसलिए वैसे कोई चंदा करने के लिए आए हमारे पास, अच्छा जी लिख लो 51 रुपए, लिख लो 50 रुपए, लिख लो जी 100 रुपए, ज्यादा अमीर होगा कोई 1000 लिखवा देगा, तो आज की महंगाई के हिसाब से उसको तोड़ करके फिर पुनर्वसी रूप में लाने में बॉम्बे से इंजीनियर मंगाए गए थे, और उन्होंने एस्टीमेट दिया जी 8 लाख से कम रुपया खर्च नहीं होगा। अब अनुमान लगाया कि भाई मानो मांगने के लिए भी जाते हैं तो देश से 8 लाख रुपया इकट्ठा नहीं होगा, और आज दिन तक हजारों सुंदर साथ होंगे जिन्होंने पन्ना जी के दर्शन भी नहीं किए होंगे। इस वास्ते वो जो पाठ रखे गए हैं उन पाठों का निछावर 1100 रुपया एक पाठ का है। जो सुंदर साथ करीब है एक पाठ की सेवा नहीं दे सकते, तो तो दो जने मिल करके एक पाठ की सेवा दे सकते हो, तीन जने मिलकर कर सकते हो। जो इस लायक भी नहीं है वो पाठ की सेवा मत दे, लेकिन आने जाने के किराए की व्यवस्था अपनी कर ले। वो कम से कम गुड़गांव से 250 रुपया सिर्फ किराया किराया आने जाने का लगेगा। लंगर वहां पर होता है, नाश्ते की भी कराने की व्यवस्था अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि मीटिंग अभी कोई हुई नहीं। जहां तक होगा लंगर से ही चाय की व्यवस्था करेंगे, लेकिन फिर भी 150 रुपया तो फालतू अपने पास होना ही चाहिए कि मानो नाश्ता पानी और सब दुख है सुख है वो गरीब से गरीब सुंदरता व्यवस्था करके चले। ठिकाना है बस लालदास, नूरी झंडा अब यहीं पर लगाना है। अब जब पन्ना जी पर आके डेरा किया, शहर के साथ उस समय कोई वहां पर शहर, हाँ मैं कह जरा एक झोंपड़ी भी नहीं थी, बिल्कुल टोटली डेरा, जंगली गौड़ लोग, भील लोग जो कि आदमी को पकड़ के खा जाते थे वो लोग थे। वहां पुरानी पन्ना में जो नीचे खड्डे हैं वहां पर बस रहे थे, खड्डों में छुप छुप के वो रहते थे। आदमी जब रात को मिला, मारा काटा, लूट लिया, खा लिया, उन्होंने जब देखा तो दिल में दया आ गई, भाई ये कोई साधुओं की मंडली है, भागो दौड़ करके चलो कि कहीं हमारे जाने से पहले नदी का पानी पी लिया तो इनकी जान चली जाएगी। क्योंकि ऊपर से जो पानी आता था तो कुछ झाड़ियां, झाड़ होते नहीं जंगल बूटियां, ऐसी थी जहरीली कि जिनके साथ पानी रिसक के आता था तो किलकल नदी में जहर ही जहर हो जाता था। पक्षी ने पिया तो पक्षी मर गया, जानवर ने पिया तो जानवर मर गया, आदमी पीता था तो आदमी मर जाता था। इस रास्ते उन गौड़ लोगों ने सोचा क्या भाई ये तो साधु महात्मा महत्व में मर जाएंगे, दौड़ करके भाग करके आए, चलो चलो इनको बताएं कि इस पानी नदी का पानी ना पीवे, जिसके पानी पीते साथ ही मौत हो जाती थी, इतना जहरीला पानी था।
सब साथ
मिलके अब गौड़ लोगों ने आवाज करके आवाज, ए बाबा जो नदी का पानी ना पीजो, ये जहर है। अब सुंदर साथ ने सोचा भी स्वामी जी का आदेश हो गया है कि रहना यही है, मुकाम ही यही है, झंडा ही यही गाड़ना है। तो लाल दास ने एक लोटा लिया, जल का भरा और श्री जी के चरण कमल दाहिना अंगूठा धो करके जल का दिया छींटा और बोल दिया जयकारा, विष की नदिया अमृत कीनी, सुख सबन को बताए सकल समाबा। उसी दिन से जहर दूर हो गई, फिर झाड़ पाड़ भी देख करके उखाड़ फूर दिए गए और सब सुख समाधान आनंद मंगल के साथ सब सकल समाज सुंदर साथ नहाए धोए विश्राम किया भोजन बना स्वामी जी को और गया सब सकल समाज नहाए नहीं बस नहा दो तब सब साथ मिल के धोयो चरण अंगूठा राज
डारो चरण
अमृत नदी में पीछे नहायो सकल समाज पीछे नहायो सकल श्री आनंद मंगल श्री राम धनी जू की श्री भाई दुरा जू की जय श्री महाराजा छत्रसाल जू की श्री सुंदर साथ जू की जय श्री सुंदर साथ जी के पिया जी तुम हो।